का चरण रेनो भूषण करिया तनो
रवि का चरण रेनो भूषण
राधिका चरण रेनो भूषण करिया तनो
राधिका चरण रेनो
अनायासे पावे गिरिधारे
अनायासे पावे गिरिधारे
अनायासे पावे गिरिधारे चरणाशय ज करे से महाशय राधिका चरणाशय ज करे से महाशय तारा मोए जाए बलिहारे
तारा मोए जाए
नाम वृंदावन जार धाम
जय
जय राधा नाम वृंदावन जार धाम कृष्ण सख विलास रानी कृष्ण सुख विलास रानी
कृष्ण
सुख राधा गुण गान ना सुनिल मोर कान
राधा गुण गान ना सुनिल मोर कान
राधा गुण गान ना सुनिल मोर कान करिल मोरे विधि
वंचित करिल मोरे विधि
वंचित करिल मोरा विधि
वंचित करिल मोरा विधि
हर भक्त संग सदा रस लीला प्रेम कथा
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 जे करे जे कहे से पाय घन श्यामा
जे कहे से पाय घन श्यामा
जे कहे से पाय घन श्यामा ते विमुख जय तार कबु सिद्धि
नाही
या ते विमुख जय तार कबु सिद्धि
नाही
नाही जाने सुनी तार नामा जाने सुनि तार नामा कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण
पाई
कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण
पाई
राधा नाम गाने कृष्णा चंद्र
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 संक्षेपे कहिनु कथा गुचाओ मने रव्यता
मनेरा
तिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्दः श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम कौन से स्थान में हैं? गहवर कुंड बरसाना। तो हम थोड़ा समय बिताते हैं श्रवण कीर्तन में, और हमने दो स्थानों में लीलाएं सुनी हैं। कौन कौन से स्थान हमने कवर किया अभी तक? साकरी खोर और गहवर कुंड और चिकसोली गांव, इम्पोर्टेंट प्लेस। तीन स्थानों से हम आए हैं। सबसे पहले हम सांकरी खोर से आए, और फिर उसके बाद एक विलेज लगा, वो कौन सा था? चिकसोली गांव। और फिर अभी कहाँ आए हम? गहवर वन में, गहवर कुंड के तट पर बैठे हैं। तो हरि नाम लेने के लिए शास्त्र में कुछ अनुकूल स्थानों का वर्णन किया है। शरणागति के 6 लक्षण भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते शरणागति में, उसमें से 2 हमारे लिए ज्यादा पावरफुल है अभी फिलहाल। ये क्या है? अनुकूलेश संकल्प प्रतिकूलेश वर्जनम। जो अनुकूल है उसको पकड़ो, अच्छी तरह से स्वीकार करो, प्रतिकूल है उसको छोड़ दो। तो जब करने के लिए है, शास्त्र कहते हैं अनुकूल स्थान कहाँ है? शहर में है कि अनुकूल स्थान नहीं है? कितना स्ट्रगल होता है हमें। तो अनुकूल स्थान कहते कुंड का तट। कुंड के तट पर बैठ के क्या करो? हरे नाम लो। पहाड़ के ऊपर, नदी के किनारे, वट वृक्ष के नीचे, ऐसे कुछ कुछ जब के लिए अनुकूल स्थानों का वर्णन सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में एक चैप्टर है जपा के ऊपर, तो उसमें वो वर्णन करते हैं। तो ये जो लीला स्थली है ब्रज की, सबसे क्या कह सकते हैं, गंभीर लीला स्थली है राधा कृष्ण की। और यह जो गौड़िया वैष्णव की स्वामिनी है,
कई सारे कृष्ण भक्त हो सकते हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय की खासियत क्या है, राधा भजन यदि, कहते हैं भक्तिनोद ठाकुर, यदि राधा रानी का आश्रय लेकर भगवत भजन नहीं करते, कृष्ण भजन तार आकार न गेला, उस व्यक्ति का कृष्ण भजन क्या हो गया, वैसे ही चला गया। इसलिए हमारे संप्रदाय में ये प्रमुखता है कि कृष्ण का भजन हम करते हैं किसके अधीन होकर, श्रीमती राधा रानी के अधीन होकर। इसलिए कृष्ण भी इवन गीता में संक्षिप्त रूप में इस बात को कहते हैं, क्या कहते हैं, महात्मानस्तु, हाँ आगे, दैवी प्रकृति माश्रित, मेरी जो दैवी प्रकृति है, दैवी प्रकृति कौन है, श्रीमती राधिका है, उनका आश्रय लेकर भगवत भजन करता है तो कृष्ण उसके लिए अनुकूल है। तो गौड़िया वैष्णव के तीन नाथ हैं, गौड़िया वैष्णव के तीन स्वामी हैं, मदन मोहन, गोपीनाथ और गोविंद देव। तो वैसे ही लेकिन गौड़िया वैष्णव की एक ही स्वामिनी है और वो कौन है, श्रीमती राधिका है या राधा रानी है। तो हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में दो पार्टियां हैं, एक पार्टी किसकी है, कृष्ण की है, दूसरी पार्टी किसकी है, राधा रानी की। तो हमें चूज करना है, हम भी पार्टी चूज करते हैं ना अपनी भक्ति में आने के बाद भी, मैं इस पार्टी का डिवोटी या उस पार्टी का हो, तो सिंपल है, हम एक ही पार्टी के हैं और राधा रानी हमारे पार्टी का नेतृत्व करती हैं। तो ये जो स्थान है ब्रज, ब्रज का मतलब सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जहाँ गौवे बिना भय के भ्रमण करती हैं, जहाँ गोपियां निश्चल होकर कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त होकर भ्रमण किया है जिन्होंने, जहाँ जहाँ उनकी चरण धूलि पड़ी है, वो सारा स्थान ब्रज है एक्चुअली। तो ऐसा ब्रज भूमि में कई सारे लीला स्थलियां हैं, लेकिन ये एक ऐसी लीला स्थली है जहाँ राधा रानी की चरण धूलि क्या है, अमाप मात्रा में है। मतलब ऐसा एक भी छोटा सा स्थान नहीं है कि जहाँ राधा रानी की चरण पड़ी नहीं हो। जैसे मैं एक बार आया था तो एक ब्रजवासी कह रहे थे, मुझे यहाँ के ब्रजवासियों से सुनना अच्छा लगता है, जब अकेला आता हूँ तो किसी ब्रजवासी को पकड़ता हूँ, मेरे एक मित्र है वहाँ, उनका एक कुटिया है पीछे, वो मिले नहीं अभी, तो वो बहुत सारी चीजें सुनाते रहते हैं। तो राधा का मतलब है जो कृष्ण के चरणों की राह देते हैं, वो कौन है, राधा है। तो ऐसे कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करने के लिए हमें राधा रानी का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद सिंपल मेथड देते हैं, आपको कृष्ण को कुछ ऑफर करना है तो क्या करो, फूल आप ऑफर करना चाहते हो तो क्या करो, राधा रानी के हाथ में दे दो, तो राधा रानी की कृपा को आप अनुकूल कर सकते हो। तो ब्रज का रत्न है राधा रानी, क्या है, ब्रज का रत्न यहाँ निवास करता है। हम अपने भौतिक जीवन में भी बहुत मोती और रत्न आदि ढूंढते रहते हैं, ब्रज के रत्न यहाँ रहते हैं, इसलिए ब्रज बोली में कहते, ब्रज में रत्न राधिका गोरी, ब्रज में रत्न कौन है, राधा रानी है जो गोरी है, और कृष्ण कैसे है, काले है। कृष्ण ने एक बार माता यशोदा से पूछा कि हे माता, मेरे रूप रंग का वर्णन सुना नहीं मैंने, बचपन में थे ना बालक कृष्ण है, कहते तुम तो बहुत काले कलूटे हो, कहते मैं अपनी छवि, मतलब छवि मीन्स अपना फोटो देखना चाहता हूँ। तो यशोदा माता कहती इजी है, काला पेंट ले लो और कुछ दो तीन हाथ इधर उधर मारो, आपका जो रूप है वो बन जाएगा। तो फिर भी कृष्ण कहते नहीं, मैं देखना चाहती हूँ। तो राधा रानी किसको अपॉइंट करते है ड्रॉइंग्स बनाने के लिए, चित्रा सखी, कौन सी सखी, चित्रा सखी, चिकसोली जो गांव है। तो चित्रा सखी के कई सारे गुण है, ये सारी सखियां अत्यंत एक्सपर्ट थी, अलग अलग कार्यों में कुशल थी। तो ये बरसाना धाम एक कमल के भांति है, और बीच में क्या है, हम ऊपर जाएंगे तो चार गढ़ है, क्योंकि ये ब्रह्मा से अभिन्न है ना, ब्रह्मा के कितने सर थे, चार सर थे, तो चार अलग अलग हिल्स हैं, मानगढ़, दानगढ़, भानुगढ़ जहाँ राधा रानी का मंदिर है, और जहाँ साकरी कोर के उस तरफ देखा वो विलासगढ़ है। तो इनमें अलग अलग विशेष लीलाएं भगवान संपादन करते हैं, और विशेष रूप से तीन प्रकार की लीलाएं इस बरसाना में होती हैं, मान लीला, दान लीला और विलास लीला। मान लीला कहाँ होती है? ये मानगढ़ है, इसके ऊपर होती है। तो राधा रानी मान व्यक्त करती है, तो मान व्यक्त करने का मतलब है रुट जाना। कृष्ण एक बार जा रहे थे राधा रानी से मिलने के लिए, तो उस समय जाते जाते कॉम्पिटेटर है ना राधा रानी की, कौन है कॉम्पिटेटर? हाँ, चंद्रावली, चंद्रभानु की पुत्री है चंद्रावली। तो चंद्रावली की जो सखी है पद्मा, रूप गोस्वामी उसका वर्णन करते भक्ति रसामृत सिंधु में, तो पद्मा रास्ते में मिले कृष्ण को, वो चंद्रावली का जो प्रेम है उनसे कृष्ण के विरह में वो जल रहे थे। ये बात पद्मा किसको कहती है? कृष्ण को कहती। कृष्ण किसको मिलने जा रहे थे? राधा रानी को। और बीच में जब ये बात कहे तो कृष्ण से रहा नहीं गया, कृष्ण राधा रानी को छोड़कर कहाँ चले गए? चंद्रावली से मिलकर। तो भौतिक रूप से देखे तो बड़ा ब्रज के लीलाओं को हम कभी भी समझ नहीं सकते, इसलिए ये क्यों राधा रानी मान व्यक्त करते, मतलब रुट जाती है। रुट जाना क्यों? क्योंकि वो अपना प्रेम कृष्ण के प्रति अधिक विकसित करती है, और कृष्ण का प्रेम को भी क्या करती है? अत्यधिक बढ़ाती है। तो जब राधा रानी के एक तोता है, वो भूल गया मैं, दक्ष या शुक, पता नहीं, शुक, तो वो घूमते घूमते राधा रानी के कुंज में जाते। दो चीजें ना, कुंज और निकुंज। कुंज क्या होता है? गहन झाड़ियां है लेकिन उसको बहुत सारे गेट्स हैं, उसमें भगवान अत्यधिक रूप में सखाओं के संग में क्रीड़ा करते, भोजन करते, आराम करते, गप्पे मारते हैं। हाँ, लेकिन निकुंज क्या है? वैसे ही गहन झाड़ियां हैं लेकिन गेट कितना है? एक, जहां सखाओं को प्रवेश नहीं है, भगवान अपने गोपिकाओं के साथ और श्रीमती राधिका के साथ, और गेट में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो वह निकुंज कहलाता है। तो ऐसे ही राधा रानी जब निकुंज में थी, इसलिए राधा रानी का एक नाम निकुंजेश्वरी है। क्या नाम है? निकुंजेश्वरी। इसलिए दूसरा नाम वृंदावनेश्वरी है, हम जानते ना, हे राधे व्रज देवी के चललिते, वृंदावनी भी कहा, वृंदावनेश्वरी कहा जाता है। तो जब राधा रानी को पता चला कि मैं तो इंतजार कर रही हूँ निकुंज में उनसे मिलने के लिए, और कृष्ण तो वहां चंद्रावली सखी को मिलने के लिए गए हैं, तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आकर क्या करते हैं? अपने सखियों को रखते कि अभी उनसे नहीं मिलूंगे। हाँ, तो भगवान आते हैं, उनको पता चलता है, रूठ जाती हैं राधा रानी इस मानगढ़ में मान लीला। और फिर कृष्ण क्या करते हैं उसको, उसको क्या कहेंगे, उनके मान को खंडित करने के लिए कई प्रकार के वेश और रूप धारण करके आते हैं। इसलिए तो जयदेव गोस्वामी उस लीला का वर्णन करते हैं। हाँ, जयदेव गोस्वामी का वो पास्ट टाइम हम सुनते हैं ना, उन्होंने वो लिखा था, क्या लिखा था? हाँ, कि है कि राधा रानी के चरण कमल कृष्ण क्या कर रहे हैं? अपने सर के ऊपर धारण कर रहे हैं। तो जब यशोदा माता ने चित्रा सखी को बुलाया कि आप पेंटिंग बनाओ, तो चित्रा सखी आ गई, उनको बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने आकर देखा कि कृष्ण का चित्र बनाना चाहती हूँ, लेकिन कृष्ण की मुद्राएं अनंत हैं, हजारों हैं, एक भी मुद्रा चित्रा सखी के मन में स्थिर, क्योंकि आप चित्र बनाते हो तो आप कैसे होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए आपका जो मति है। तो एक भी मुद्रा कृष्ण की उनके मन में स्थिर नहीं हो रही थी, और बहुत कठिनाई उनको महसूस हो गई। हाँ, किन्हें कठिनाई महसूस हुई? चित्रा सखी को। तो चित्रा सखी फिर इस बात को समझ लेती है। हाँ, वो सोचती है कि मैंने वो यशोदा माता को बताती है अपनी जो दिक्कत है, तो यशोदा माता कहती है कि आपको वास्तव में राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण आप कृष्ण का चित्र नहीं बना सकते हो। तो ऐसे ये स्थान है चित्रा सखी का, जिसको सोली गांव भी कहते हैं, और इस स्थान में कृष्ण कई सारे लीलाओं को करते हैं। और जैसे हमने ये गीत गाया, तो इसमें सबसे पहले क्या लाइन है, कौन बता सकता है? राधिका चरण रेणु भूषण करिया, भूषण मीन्स आभूषण। तो राधा रानी की चरण धूलि अपने सर का या शरीर का आभूषण बनाने के लिए सारे देवी देवता यहाँ आते। एक ब्रज की खासियत है, जैसे कोई बहुत बड़ा स्वामी है, मालिक है ना, तो उसके नौकर होते हैं, लेकिन कुछ नौकर महल के अंदर ही रहते, कुछ नौकर जाकर दूर बाहर रहते ना। तो ब्रज में देवी देवताओं में केवल दो तीन को ही अलाउड है, एक ब्रह्मा और दूसरे है शिव जी और एक पार्वती, बाकी सब आते और जाते रहते हैं, इंद्र वगैरह स्टे नहीं कर सकते यहाँ। तो यहाँ जब ब्रह्मा ने सोचा कि मैं ब्रज के जो भगवान के परिकर है, पार्षद है, विशेष रूप से राधा रानी है, उनके चरणों की धूली प्राप्त करना चाहता हूँ। ब्रह्मा की तो बहुत इच्छा है। एक बार ब्रह्मा ने देखा कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ बछड़े चरा रहे हैं और यमुना के तट के ऊपर बैठकर भोजन खाते रहते हैं, तो उन्होंने सोचा ये हाथ धोने के लिए यमुना में जाएंगे, तो ये यमुना में जाके मछली बन गए। कौन? ब्रह्मा जी। और कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ तट के ऊपर प्रसाद भोजन कर लिया और फिर वहां से गए हाथ धोने के लिए, तो देखा मछली बिल्कुल तैयार है। हाँ, उन्होंने सोचा ये तो ब्रह्मा है, तो भगवान ने क्या किया, पानी उठा लिया और हाथ जाकर जमीन के ऊपर धो लिया। तो ब्रह्मा हमेशा लालयित रहते हैं कि हमें कृष्ण का जो उच्चिष्ट प्रसाद है वो ग्रहण करने के लिए। तो वैसे ही ब्रह्मा कहते हैं कि ये गोपियों का इतना प्रेम है कि मैं इनके चरणों की धूली बनना चाहता हूँ। आप सोचो, ब्रह्मा के पद का कभी सोचा है आपने? हम अपना छोटा सा पद होता है ऑफिस में, घर में, टेम्पल में, तो चौड़े हो जाते हैं नहीं, मेंढक की तरह। लेकिन ब्रह्मा के बारे में सोचो, और हम अभी ब्रह्मा के ऊपर ही चल रहे हैं एक प्रकार से, और हमारे संप्रदाय की क्या है, आचार्य के ऊपर। लेकिन हमारी भावना क्या होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हम ब्रह्मा से बड़े हैं, है ना। राधा रानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो इस संप्रदाय के आचार्य ब्रह्मा हैं, और ऐसे ब्रह्मा जी हैं कि जिन्होंने कई सारी चीजों की सृष्टि की है, और कई उनको सोचो कितना आनंद आता होगा। जैसे पारिवारिक जीवन में जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है ना, तो उसको अच्छा लगता है कि बच्चों के विवाह हो जाए, फिर उनके बच्चे हो जाए, पोतों को मैं अपने गोद में खिलाऊं, बहुत सारा फैलता है ना उसका परिवार, उसको आनंद आता है। तो सोचो ब्रह्मा को कितना आनंद आ रहा होगा, ब्रह्मा का परिवार सबसे सीनियर है, सबसे ओल्ड है, दादा परदादा, कितने डेफिनेशन आपने दे सकते हैं। तो ब्रह्मा को इतना सब कुछ होकर भी इतने बड़े बड़े पुत्र है उनके, नारद जैसे, फोर कुमाराज, लेकिन उनके हृदय में अहंकार नहीं है। इसलिए सॉन्ग में कहते ना, अहंकार अभिमान असत संग असत ज्ञान छाड़ी भज गुरु पाद पद्म। तो ब्रह्मा इतनी क्वालिफिकेशन है ब्रह्मा के पास कि उनको माँ नहीं है, सीधा किससे जन्म लिया उन्होंने, पिता से। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई वो 12 साल स्कूल में नहीं गए, कोई PhD नहीं ली, कृष्ण आए कुछ सेकंड के लिए उनको उपदेश दे दिया बांसुरी से, किससे दिया, बांसुरी से, और कहाँ दिया, हृदय के अंदर, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवय, ब्रह्मा का एक नाम आदि कवि है। तो ऐसे ब्रह्मा के पास इतनी योग्यता होकर भी भागवतम में एक प्रार्थना में ब्रह्मा कहते हैं, मैं तो पत्थर बनना चाहता हूँ ब्रज का, क्या बनना चाहता हूँ, पत्थर, और पत्थर ताकि ब्रज के जो भक्त हैं वो चले और मेरे सर पर धूली उनकी गिरे। तो ऐसे ब्रह्मा ने सत्ययुग के शुरुआत में 60,000 साल तपस्या की, और तपस्या करके कोई उनको देख भी नहीं रहा था। क्यों सत्ययुग में उन्होंने तपस्या की, इसलिए कि कृष्ण द्वापर युग के अंत में आने वाले हैं, तो वो 60,000 साल बीते, फिर उन्होंने 60,000 साल सत्ययुग के एंड में तपस्या की, तब कृष्ण उनके पास आए। कृष्ण आते उनके पास और वो अपना इच्छा प्रकट करते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कृष्णा, मैं आपकी लीलाओं को देखना चाहता हूं और आप मेरे ऊपर लीला करें, ऐसा कुछ उपाय मुझे बता सकते हैं। तो भगवान उनको कहते हैं, ततो ब्रह्मन् व्रजं गत्वा वृषभानु पुरंगता पर्वतो भवसि त्वं हि मम क्रीडा च पश्यसि। तो कहते हैं ब्रह्मा, तुम कहां चले जाओ, वृषभानुपुर में चले जाओ, वहां जाकर मैं तुम्हारे ऊपर कई सारी क्रीड़ाएं करूंगा। और फिर ब्रह्मा इस स्थान में जन्म लेते हैं, किस रूप में, इस पर्वत के रूप में। तो ब्रज में 3 पर्वत हैं, कौन कौन से हैं, गोवर्धन, ये ब्रह्माचल, ये ब्रह्मा गिरी, और नंदेश्वर जहां अभी दोपहर को जाएंगे। तो यहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं इस पहाड़ के रूप में, और जिसके ऊपर कृष्ण और श्रीमती राधा रानी कई प्रकार की लीलाएं करती हैं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि ये रस का भरा स्थान है। कौन सा स्थान है? आप थोड़े सीधा बैठ जाइए, सब लोग ढीले हो गए मुझे लग रहा है। क्या हो गया, बंद करो क्या?
ब्रेकफास्ट नहीं किया ना?
लियो लियो, थक गया, तब खड़े हो जाओ।
9:40 हो गया, ब्रेकफास्ट नहीं हुआ अभी तक।
मुझे ढीला ही महसूस हो रही है आज, आई डोंट नो।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
मुझे लगा बेस्ट है, आपको चलाते रहो, जस्ट फिनिश करो जल्दी।
इसके बाद ब्रेकफास्ट
होगा। पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, ये सबसे खुश है।
ये बोले जल्दी खत्म करो, ये लो मूंगफली खा दो, टाइम पास माइंड, बस जल्दी खत्म करो।
वो थक गए। आपको घूमना है क्या?
नहीं
नहीं,
अंदर खेलो, घूमो यहाँ पर,
जाओ घूम के आ जाओ दोनों, फिर आप आपको ऊपर ऊपर मिलेंगे। तो हम कहाँ थे? स्वर्ग में। तो हम कहाँ थे अभी?
तीन पर्वत, ब्रह्मा विष्णु महेश।
कौन कौन से हैं?
गोवर्धन,
गोवर्धन और ब्रह्मगिरी और नंदेश्वर। तो इस प्रकार से ब्रह्मा भगवान से याचना करते हैं और ब्रह्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं कि आप जाओ बरसाना में निवास करो और वहां जाकर मैं अपने भक्तों के संग में आऊंगा और वहां कई सारी लीलाएं करूंगा। इसलिए ब्रज भाषा में कहा गया है, बरसाने के वास को आस करे शिव शेष। अभी ये प्यार उन्होंने बोला था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो वो जो ब्रजवासी थे उन्होंने कहा बरसाना का वास करने के लिए कौन इच्छा व्यक्त करते हैं? शिवजी और ब्रह्मा आदि। तो कहते हैं जाकी महिमा की कहें जहां कृष्ण धरे सखी वेश। ऐसे बरसाना की इतनी अमेजिंग ग्लोरीज हैं कि यहाँ कृष्ण भी बारंबार आते हैं और सखी का वेश धारण करते हैं। इसलिए बरसाना में कभी आसुर वगैरह नहीं आते। भगवान ने एक ऐसा स्थान रखा है जहाँ केवल शुद्ध लीलाओं का प्रभाव है, जहाँ आसुरों की एंट्री नहीं है। और कृष्ण यहाँ आते भी हैं तो अलग अलग वेश में आते, कभी झाड़ू वाली बन के आएंगे। हाँ, एक स्थान है ऊपर जहाँ राधा रानी खड़ी होकर देखती हैं। कहाँ देखती है? वहां से सीधा क्या दिखता है? नंद भेल दिखती है, वहां से देखती है कृष्ण को और वहां से इशारे करती रहती है। तो ये ऐसा स्थान है जहाँ लीलाओं की बाढ़ आती है। तो कृष्णा राधा रानी से मिलने के लिए सदैव यहाँ आते हैं। कभी वो श्यामा सखी बन के आते, कभी योगी बन के आते, कभी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके आते हैं, कभी वो झाड़ू वाले या फिर डॉक्टर बन के आते हैं, और ऐसे कभी सखी बन के आते हैं। ऐसे कई सारे वेश कृष्ण धारण करके आते हैं और कभी कभी पकड़े जाते हैं। कभी कभी उनको अहंकार होता है कि मुझे कोई पकड़ेगा नहीं है, लेकिन जो पकड़ा जाते हैं तो उनको फिर सारे गोपियां घुमाती रहते, देखो पकड़े गए हैं। जैसे हम वो कृष्ण लीला में सुनते हैं ना, उपनंद की पत्नी थी, क्या नाम था उनका? प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। कृष्ण के ताऊ थे ना, तो ताई होगी उनकी वो, तो प्रभावती। और ये लीला आपने सुनी है, मैं रिपीट करता हूँ। तो प्रभावती और ये गोपियां यशोदा के पास जाकर बहाने बनाती थी। उनका प्रॉब्लम था कृष्ण को कम दिखाई देते थे कृष्ण, इसलिए कंप्लेंट करने के बहाने घर में घुसते थे, लेकिन किसको देखते रहते थे? कृष्ण को, ये गोपिकाएं। जब इस प्रकार से होता था तो यशोदा माता ने कहा बहुत कंप्लेंट करते, जब रोज देखो तब मेरे घर में आते जुलूस लेके आती हैं, कंप्लेंट करते रहते। बेस्ट है क्या करो, रेड हैंड पकड़ो। कृष्ण को रेड हैंड नहीं पकड़ा जा सकता, कौन से हैंड पकड़ा जा सकता है? व्हाइट हैंड। तो प्रभावती के घर में कृष्ण गए और प्रभावती सोच ही रही थी कि कैसे पकड़ो। तो जनरली प्रभावती ऊपर टांगती थी ना वो मटके, तो आज सोचा आज नीचे टांगूंगी, थोड़ा इजी होगा। तो कृष्ण गए अपने सखाओं के साथ, बंदरों के साथ, सबके साथ, और खा रहे, बांट रहे, सब कुछ हो रहा है। जैसे पॉट में हाथ डाला, प्रभावती आ गई, पीछे से जोर से हाथ पकड़ा। कृष्ण ने कहा आज ये अलग से क्यों लग रहा है? तो उनको पकड़ लिया और उनको कहा देखो अभी आप पकड़े गए हो, आपको रेड हैंड पकड़ा है और माता यशोदा यही चाहती हैं। तो देखो उन्होंने कहा देखो मैं नहीं खा रहा था माखन, मैं जब पता चला यहाँ आया तो देखा तुम्हारे घर में बहुत चींटियां हैं, मैं सोचा चींटियों को हटाऊं, तो वो चींटियां वो मक्खन में घुस रही थी, और मैंने क्या किया, उन चेटियों को हटाने के लिए अपना हाथ उस मक्खन पॉट के ऊपर डाला, ले देखा चेटिया तो अंदर डूब गई है दूध और मक्खन के अंदर। तो मेरा दोष नहीं है प्रभावती, मैं सोचा आपका मक्खन खराब हो जाएगा, तो मैं उस मक्खन को निकालने के लिए अपना हाथ पॉट में डाला, तब तक मैं क्या देखता हूँ कि चींटियां मेरे पांव से चढ़कर मेरे ओठों के पास आ गई। अब सोचो प्रभावती, जब कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है और उसके ओठों में कुछ लगे तो भोजन का हाथ लगेगा कि नहीं लगेगा। कहते आपका मक्खन और दूध आदि, जब मैं सोचा ये चींटियों का हटाओ कैसे, तो जो हाथ गलती से उसमें चींटियां इतनी नीचे चली गई थी पॉट के अंदर, उनको हाथ हटाने के लिए जब हाथ डाला तो वही हाथ अचानक मैंने लिया और अपने ओठों में लगाया। तो जैसे ओठों में लगाया तो थोड़ा सा मैंने क्या कर लिया, उसको
चख लिया।
तो मेरा दोष नहीं है, देखो तुम अभी मुझे छोड़ दो। कहते नहीं, आज तुम्हें दंडित करके रहोगे। तो प्रभावती इतना टाइट कृष्ण का हाथ पकड़ती है और घर से बाहर चलती है, तो कृष्ण को बहुत शर्म आती है कि आज पकड़े गए, चोरी आज पकड़ी गई, और देखा कि सबके सामने मैं पकड़ा गया हूँ, कैसे मुंह दिखाऊं सबको। देखा कि उनके मित्रगण हंस रहे, क्योंकि जनरली क्या होता था, कृष्ण पकड़े नहीं जाते थे, ये भाग जाते थे, उनके मित्र पकड़े जाते थे, उनकी पिटाई होती थी। कृष्ण ने कहा ये सब हंस रहे मुझे देख के, तो इनको कहते देखो एक ना मेरी डिमांड है। प्रभावती कहते क्या डिमांड है, कहते आपकी चुनरी मेरे ऊपर डाल दो, ढक के ले जाओ मुझे, कोई मुझे देखे ना। तो जब उनको कहा कि ढक के ले जाओ, तो उन्होंने कहा ठीक है, छोटा सा डिमांड है, मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने चुनरी डाल दिया और कृष्ण का टाइट हाथ पकड़ा था ना जैसे, तो इतना टाइट पकड़ा था। फिर कृष्ण जब वार वो कहीं से तेजी से जा रहे थे ना, जैसे कोई बहुत क्रोधित स्त्री हो हाथ पकड़ के, बच्चों को गांव में आपने देखा होगा घसीट के ले जाती है, गुस्सा आता है माता जी को, तो ऐसे ले जा रहे थे कृष्ण बेचारे, दौड़ के जा रहे थे उसके साथ साथ। और फिर कृष्ण ने सोचा, कृष्ण ने कहा कुछ आइडिया करता हूँ। तो जब ये चुनरी डाली रहे थी ना, तो उन्होंने अपने सखा को बोला था मेरे पीछे पीछे चलते हुए आना। तो उनको कहा देखो प्रभावती, आपने इतना टाइट पकड़ा, मेरा हाथ तो मक्खन की तरह सॉफ्ट है, थोड़ा ढीला करो या हाथ बदलो, थोड़ा दर्द हो रहा है, आप क्या करो हाथ बदलो। तो हाथ बदलने के लिए कृष्णा चुनरी के अंडर ही थे, नीचे थे, तो उस वो जो सखा बुलाया था वो पीछे पीछे चल रहा था कृष्ण के, और ये तो आगे देखते हुए चल रही है। जब भगवान ने कहा हाथ बदलो, तो हाथ बदलते हुए कृष्ण ने क्या किया, अपने सखा का हाथ उसके हाथ में दे दिया और वो भी चुनरी के नीचे गया। ये भाग के चले जाते यशोदा के पास, जाते माता जी, माँ माँ बहुत थक गया हो, मक्खन चाहिए। वो बेचारी संदेश खिलाती है, मक्खन खिलाती है, दही खिलाती है, कहते नींद भी आ गई है, तो वो सुलाती भी है। तब तक प्रभावती दौड़ के आती है, प्रभावती आ गई, यशोदा यशोदा। और ऐसे नहीं हो रहा था, जब प्रभावती चल रही थी ना, तो सारे जो देख रहे थे गोपिकाएं, कुछ सखा ऐड होते जा रहे थे, ग्रुप बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। तो यशोदा जब घर के बाहर आई, देखा कि इतना बड़ा जुलूस मेरे घर के सामने, कहा कौन से सखी को चुनरी के नीचे डाल के लेके आई वो। तो अभी वो सखी नहीं थे, वो कौन थे, छोटे से ग्वाल बाल थे, सखा थे। जब उन्होंने कहा ये आपके कृष्ण को, हो ही नहीं सकता, यशोदा ने कहा अभी अभी मेरे अपने बेटे को अंदर संदेश आदि खिलाया और सो रहा है। तो कृष्ण जैसे आप सोकर उठते हो ना, थोड़ा सा ऐसे करते हरी बोल, कहते माँ कौन चिल्ला रहे बाहर, आवाज क्या आ रही है। तो कृष्ण बाहर आते हैं, तो कृष्ण अंदर ही थे थोड़े, तो यशोदा को वो दिखाने के लिए चुनरी जैसे हटाती है, तो हम सुनते हैं ना कि किसके पुत्र थे वो, प्रभावती के पुत्र थे और कृष्ण के वो सखा थे। तो प्रभावती अपने पुत्र को देख के, बल्कि जब ये पकड़ी थी कृष्ण को, तो कृष्ण ने कहा था तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, भारी पड़ेगा, मुझे प्लीज छोड़ दो। उसने सुना नहीं था। तो इस प्रकार से भगवान इतने अधिक लीलाएं करते हैं, और वो छुप छुप के आते हैं यहाँ बरसाना में, और बरसाना में आकर हमेशा राधा रानी को मिलने का प्रयास करते हैं। तो ये जो चिक्सोली गांव है, ये चित्रा सखी का स्थान है, जहाँ चित्रा सखी निवास करती हैं। एक बार श्रीमती राधा रानी अपने महल से वहाँ चली गई चिक्सोली गांव में चित्रा सखी के पास, और जब चित्रा सखी सुंदर पेंटिंग्स बनाते थे, तो चित्रा सखी ने एक बेबीटी का पेंटिंग है, चित्रा सखी ने बनाया हुआ, कभी देख ले देख सकते हैं। तो चित्रा सखी ने सुंदर सा कृष्ण का पेंटिंग बनाया था, तो ये जब राधा रानी गई वो पेंटिंग को देखी, इतनी आकर्षित हो गई कि राधा रानी ने अपना मन हृदय उस कृष्ण को अर्पित कर दिया। उनको पता नहीं है कृष्ण है। तो फिर उस समय चित्रा सखी के वहां जब निवास कर रही थी, तो अचानक नहीं, सबसे पहले उनके घर में उन्होंने दूर से बंसी की आवाज सुनी थी, और जब बंसी की आवाज सुनी, वो आवाज को सुनते ही राधा रानी ने अपना मन तन हृदय उनको अर्पित कर दिया। और फिर जब इनके घर में ये सुना, क्या सुना, ये चित्र देखा, तो वो चित्र को भी अपना मन हृदय ये सब चीजें अर्पित कर दे। और फिर थोड़ी देर के बाद राधा रानी देखती हैं कि कोई एक ग्वाल बाल अपने सखाओं के साथ गव्य चराते हुए उस पहाड़ के ऊपर उनको नजर आता है, तो उसको देखकर भी अपना हृदय और मन उनको अर्पित करती है। तो ये तीन, तो राधा रानी चित्रा सखी को कहती है कि ये कैसे है, मैं तो आर्य कुल की युवती हूँ, मैंने अपना मन तीन तीन पुरुषों को अर्पित कर दिया है, तो ये उचित नहीं है। तो चित्रा सखी कहती है वो तीनों क्या है, एक ही है, जो चित्र मैंने बनाया वो कृष्ण का है, जो बांसुरी बनाते हैं वो किसका है, कृष्ण का ही है, और जो आपने देखा अभी अभी गव्य चराते हुए जा रहे हैं वो भी कृष्ण ही है। तो इस प्रकार से कृष्ण राधा रानी को सदैव अनेकों लीलाओं के द्वारा आकर्षित करते हैं। और ये जो बरसाना है जिसके बारे में कई शास्त्रों में वर्णन आता है, और एक तो चीज रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि ये जो स्थान है बरसाना, जहाँ श्रीमती राधा रानी के जो पिता है उनका नाम क्या है, वृष भानु। तो बरसाना में मतलब ब्रज में नौ भानु हैं, इनके कितने ब्रदर थे, और आठ ब्रदर थे वृष भानु के, और आठ भाई थे, और जितने भी आठ सखियां हैं ये वृष भानु के भाइयों की पुत्रियां हैं, ललिता, चंपकलता, चित्रा, तुंगवेदी, क्या है, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ आते हैं और कई सारी लीलाएं करते हैं, विशेष रूप से राधा रानी को आकर्षित करने के लिए। और ये उनका रास स्थली है गहवर वन। यहाँ गहवर मीन्स डेंस, डार्क या डीप या फिर बहुत गहरा। तो यहाँ विशेष रूप से अपने सखियों के साथ राधा रानी आती है, तो कृष्ण यहाँ विशेष रूप से रास लीला करते हैं, इसलिए जो राउंड राउंड बने हुए हैं ना, यहाँ है, उधर आगे है, जहां जहां ब्रज में देखते हैं वो सब रास मंडल है, उसको रास मंडल कहते हैं। तो भगवान यहाँ रास क्रीड़ाएं करते हैं। एक डिवोटी वर्णन करते हैं कि एक बार कृष्ण अपने एक सखा के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने जो दाल हो, दाल को क्या कहते हैं, मूंग दाल, दूसरी कौन सी दाल होती है, चना, चना, चना जो खेती में उगता है, कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है, तो अपने सखा के साथ चोरी करते, वो हरा हरा चना होता है जो भूंज कर खाते हैं लोग, तो भगवान अपने सखाओं के साथ खेत में जाते हैं, उसको उखाड़ते हैं, दौड़ते हैं, तो खेत में दो स्त्रियां उनके पीछे भागती है उनको पकड़ने के लिए। तो भगवान ऐसे चिकसोली से घूमते घूमते यहाँ घुसते अंदर, और यहाँ आकर, अरे
आज गहवर वन बिहारी जी नए आए हैं तो उनका अभिषेक हो रहा है, आप दर्शन कर
लीजिए। तो फिर कृष्ण यहाँ आते हैं और चुपके से झाड़ियों के बीच में बैठकर अपने सखाओं के साथ वो चना खाते, तो जो दो स्त्रियां उनके पीछे दौड़ के आती हैं वो भी आकर उनके सौंदर्य से इतने आकर्षित होती है कि वो आकर भूल जाते हैं कि हम उनको पकड़ने आए हैं, वो उनको खिलाना शुरू करती है। तो ये स्थान है जहाँ वल्लभाचार्य आए थे, और वल्लभाचार्य यहाँ से जब परिक्रमा कर रहे थे उन्होंने एक अद्भुत चीज देखी कि एक सांप मर रहा है और उसको बहुत सारी चींटियां खा रही है, हम उदाहरण सुनते हैं ना। तो वल्लभाचार्य को उनके शिष्य ने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा ये ऐसा गुरु है जो शिष्यों को एक्सप्लॉइट कर रहा था, या अनक्वालिफाइड गुरु है जो शिष्यों का उपभोग कर रहा था, जिसके कारण ये सारे शिष्य चींटियां बने हैं, और वो गुरु क्या है, सांप है। हाँ, तो वल्लभाचार्य की कृपा से या राधा रानी की कृपा से वो भी मुक्त हो जाता है। फिर एक स्थान का में वर्णन आता है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के विरह में यहाँ आके पहुंचा गहवर वन में, उसके पत्नी का नाम था किशोरी, क्या नाम था,
अभी यहाँ आकर वन में किशोरी किशोरी चिल्ला रहा था, लेकिन राधा रानी को लगा किसका नाम ले रहा है, मेरा नाम लिया। राधा रानी ने ये नहीं सोचा, सखियों ने कहा ये तो पत्नी का नाम ले रहा है, किशोरी किशोरी कह रहा है। राधा रानी कहते नहीं, ये मेरे नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। तो फिर भी राधा रानी उसके ऊपर कृपा करती है, इसलिए कहते हैं ये बरसाना वो स्थान है जहाँ से केवल रस ही टपकता है, हाँ रस ही यहाँ से निकलता है। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे नारायण भट्ट, जिन्होंने यहाँ राधा रानी जो हम दर्शन करेंगे वो उन्हें प्राप्त हुई थी एक स्थान में, और फिर उनकी स्थापना की। तो इस प्रकार से हम ऊपर भी जाएंगे तो और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हम वहाँ अभिषेक का दर्शन करने चलते हैं, गहवर वन बिहारी शायद आए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने गहवर कुंड जिसे कृष्ण कुंड भी कहते हैं, फिर उसके बाद हम कहाँ चले, मोरकुटी। तो ये मोरकुटी अच्छा स्थान है, कृष्ण हमेशा शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण इतने सुंदर हैं कि वो जो आभूषण धारण करते हैं वो कृष्ण के कारण सुंदर लगते हैं। एक बार कृष्ण आ रहे थे चलते हुए तो राधा रानी दूर से कृष्ण को देखते जा रही है, और क्या देख रही होगी बताओ, मोर पंख देख रही थी। कृष्ण आके चले भी जाते हैं उनके सामने से तो भी एक ही चीज वो देख रही थी, एक ही चीज इतनी सुंदर है कृष्ण जो चीजें धारण की है, तो कृष्ण का सौंदर्य कितना अधिक होगा। इसी कारण से कामदेव भी भगवान के सौंदर्य से आकृष्ट होकर गिर पड़ता है वृक्ष के ऊपर से। जब वो आया था नंदगांव में, उसने सुना कि संसार में सबको मैं मोहित करता हूँ, इसलिए उसका नाम कंदर्प है। हाँ, तो उसने सोचा मैं सबको अपनी ओर आकृष्ट करता हूँ, ब्रजराज कृष्ण है उनको आकृष्ट करने के लिए वो आए। तो वो सोचा कब बाहर निकलेंगे घर से महल से, तो वो बाहर जाके पेड़ के ऊपर बैठ गए अपने बाण लेकर। उनके हाथ में 5 पुष्पों से बने हुए 5 बाण होते हैं, तो बाण लेके तैयारी थे निशाना अपना लगाए हुए। तो कृष्ण जैसे बाहर आए उनके सौंदर्य को देख रहे थे, धड़ाम से ऊपर से गिर जाते, हर मान लेते वो अपने। तो ऐसे भगवान अत्यधिक सुंदर हैं। तो कृष्ण यहाँ मोरकुटी में, हाँ जब राधा और कृष्ण और सखिया मिलती हैं तो यहाँ नृत्य करने लगते हैं। पहले तो उन्होंने देखा कि मोर नाच रहे हैं, दिल्ली मंदिर के जो पेंटिंग्स है ना उसमें एक पिक्चर है, याद है आपको किसी को, परिक्रमा मार्ग में है ना, मोर बन के नाच रहे भगवान। तो भगवान और राधा कृष्ण ने देखा कि यहाँ ये मोर अत्यधिक आनंदित होके नाच रहे हैं, और वर्षा की शुरुआत होने वाली है, मेघ आ गए थे आकाश में, तो ये देखकर राधा कृष्ण भी नृत्य करने लगते हैं। दूसरी एक लीला तो यह है कि कृष्ण जब नंदगांव में थे उनका भी एक स्थान है ऊपर से देखने का, वहां से कहते ना मतलब स्पॉट्स होते हैं, आप जब साइट सीइंग करने जाते हो पहाड़ों में तो वहां से आप देखते हो, मतलब हम वहां जब महाराष्ट्र में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं कर, तो वहां कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं पहाड़ों में जहां से आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। तो वैसे ही नंदगांव में एक स्पॉट है जहां से कृष्ण खड़े होते हैं वहां से उनको सीधा यहाँ बरसाना नजर आता है। तो जब भगवान ने देखा कि राधा रानी तो आज आई नहीं कुकिंग के लिए, क्योंकि कुकिंग 3-2 लोगों की कुकिंग बराबरी है। जब हम किचन में होते हैं तो हमें 3 पर्सनालिटीज का स्मरण होना चाहिए, सर्वप्रथम किसका, राधा रानी का। राधा रानी की जो कुकिंग है उसकी क्या कहते हैं बराबरी कोई नहीं कर सकता, उनके समान कुकिंग करने वाली एक ही है, और वो कौन हो सकती है बताइए,
यशोदा मैया।
हाँ यशोदा माता। तो रस के कारण, वात्सल्य रस के कारण इनकी कुकिंग की श्रेष्ठता है यशोदा माता के, और उनके माधुर्य के कारण वो श्रेष्ठ है, लेकिन कुकिंग की बराबरी है दोनों की। तो ऐसे
तीसरा
चंपकलता, ये जो तीसरी सखी है। तो भगवान ने देखा कि आज तो आए नहीं कुकिंग करने के लिए, और यशोदा माता तो हमेशा चाहती हैं कृष्ण राधा रानी के हाथ से खाए। क्यों चाहते हैं, क्योंकि दुर्वासा मुनि का उनको वर मिला था। दुर्वासा मुनि जब वृषभानुपुर, इसके लिए इसके बहुत सारे नाम है, बृहत्स भानु, या वृषभ भानुपुर बरसाना। तो जब दुर्वासा मुनि यहाँ आए तो राधा रानी सारे सखियों के साथ खेल रही थी। सखियों ने देखा कि दुर्वासा आए, सारी भाग गई, केवल राधा रानी बची। राधा रानी बहुत हम्बल और सरेंडर थी, प्लीजिंग उनका एटीट्यूड था। दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को देखा तो कहा कि हे राधिका, आप मुझे स्वीट राइस बना के खिलाओ। तो राधा रानी ने स्वीट राइस बनाया, दुर्वासा मुनि खाकर इतने आनंदित हो गए तो उन्होंने कहा, आपको आज से मैं वर देता हूँ कि आपकी जो कुकिंग है सर्वोत्कृष्ट होगी, और जो भी इसको खाएगा उसका आयु, उसका फेम, ये सारी चीजें बढ़ेगी। तो जैसे ही यशोदा माता को ये पता चला तो यशोदा माता हमेशा सोचती थी कि राधा रानी आए कुकिंग के लिए, और रोज राधा रानी के लिए कुकिंग के लिए वहां जाना पड़ता था नंदगांव में, और वो रोज जाया करते थे अपने कुछ सखियों के संग में, और राधा रानी के लिए अलग से स्थान भी था वहाँ कभी स्टे करे तो। अधिकतर वो जाती थी सुबह और फिर वापस आ जाती थी कुकिंग करके। तो इवन राधा रानी जब यावट में या जावट में रहने लगी तभी भी वैसे ही था, कुकिंग के लिए वहां जाया करते थे। तो जब इन्होंने देखा कि एक दिन कृष्ण ने कि आज आई नहीं है, तो कृष्ण ने सोचा आज मैं बरसाना जाता हूँ, मतलब कृष्ण को बहाना चाहिए कहाँ जाने के लिए, बरसाना। इसलिए बरसाना ये कृपा का स्थान है, और कृपा प्राप्त करने के लिए एक ही पात्र चाहिए। कौन सा पात्र है वो? ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता। हाँ, जिसके पास कृतज्ञता है वो उसका पात्र उतना बढ़ जाता है। हम जितने ग्रेटफुल नहीं होते हैं उसके उल्टा क्या है, कृतज्ञ। ग्रेटफुल नहीं होते हम दूसरों के प्रति तो हमारा पात्र छोटा छोटा हो जाता है कृपा को स्वीकार करने का, और एक बार तो पात्र ही हाथ से खत्म हो जाता है, हम बिना पात्र के रह जाते, कर पात्र। तो जब ग्रेटफुल होते हैं हम, कृतज्ञ होते हैं हाँ कि कृष्ण ने मुझे यहाँ अलाउ किया है उनके धाम में आने के लिए, मेरी क्या योग्यता है, सड़े हुए में हाँ शहर में रह रहा हूँ, अपने पूर्व कर्मों को हम देखें तो लज्जा महसूस होती है। लेकिन हम जब ग्रेटफुल होते हैं राधा रानी के प्रति, कृष्ण के प्रति, स्पिरिचुअल मास्टर डिवोटीज के प्रति, तो हमारी कृपा प्राप्त करने की क्षमता बढ़ जाती है, और इतनी हम कृपा रिसीव करते हैं। हाँ, इसलिए ये पात्र अनंत है जो बढ़ता ही जाता है, अदरवाइज छोटा छोटा हो जाता, टूट जाता है एक दिन। तो फिर कृष्ण ने सोचा कि मैं आज जाता हूँ, तो कृष्ण आ गए और एक किसी हिल के ऊपर खड़े हो गए। यहाँ तो चार हिल है ना, आपके पीछे विलासगढ़ है, इस तरफ मानगढ़ है ना, और ये दानगढ़ है, और सामने जो टेम्पल है राधा रानी का आगे उसको भानगढ़ कहते हैं या भानुगढ़। तो जब कृष्ण आए एक हिल के ऊपर, ऊपर से आवाजें करने लगे, किसकी आवाजें करने लगे, मोर की आवाजें। अभी सब लोग, विशेष रूप से कृष्ण जब आवाज करते हैं तो राधा रानी ने सुना ये मोर की आवाज है, लेकिन यहाँ वहां का मोर नहीं है, ये तो मेरा मोर है, राधा रानी ने सोचा। तो राधा रानी अपने महल से बाहर आई, सोचा परमिशन मांगू कीर्तिदा का। ये दोनों के मदर्स का नाम कितना अमेजिंग है, कृष्ण के मदर का नाम क्या है, यशोदा, यश देती है। कृष्ण का यश किसी ने फैलाया है तो किसने फैलाया, माँ का कितना बड़ा रोल है। और कीर्तिदा जो कीर्ति को देने वाली है, फेम, हाँ वो भी है। तो वैसे ही कीर्ति बढ़ाई हाँ राधा रानी की, या राधा रानी के कारण जिनकी कीर्ति बढ़ी, दोनों चीजें हैं। तो ऐसे कीर्तिदा देवी का उन्होंने परमिशन नहीं लिया और निकल पड़ी बाहर। तो राधा रानी जब चलती हैं तो उनके चरण चिन्ह दिखाई देते हैं, इधर भी नीचे मंदिर में हम जाएंगे जब ब्रह्मा का छोटा सा टेम्पल है ना, उसके साथ शिला है तो उसको कहते किशोरी के चिन्ह, वहाँ किशोरी राधा रानी के चिन्ह है छोटे से। तो राधा रानी जब बाहर निकलती तो उनके चरण चिन्ह ऐसे क्लियरली विजिबल होते हैं। तो राधा रानी ढूंढते ढूंढते, और कृष्ण तो आवाजें मोर की करते जा रहे हाँ, तो ये जहाँ से आवाज आ रही है उस दिशा में चलती गए तो देखा कि कृष्ण है हाँ। तो कृष्ण उस एरिया में थे जहाँ गुफा में बैठ गए। कृष्ण ने राधा रानी के गोद में अपना सर रखा, राधा रानी कृष्ण के बालों को सहरा रही थी। तो उस समय कीर्तिदा देवी ने देखा, कीर्तिदा देवी ने देखा कि अरे मेरी जो पुत्री है वो नहीं है महल में, सब जगह ढूंढा उन्होंने तो राधा रानी नजर नहीं आ रही थी। तो कीर्तिदा देवी बाहर निकली उनको ढूंढने के लिए, तो जहाँ जहाँ चरण चिन्ह उनको दिखाई दे रहे थे वहां वहां से वो जाने लगे तो फाइनली वो कंदर आया, गुफा के वहां पहुंची। गुफा के वहां पहुंचते उन्होंने आवाज दी, ओ राधिका। हाँ, तो वहां राधा रानी ने तो बाहर नहीं देखा, लेकिन कृष्ण ने बाहर देखा कि कीर्तिदा देवी आई है। तो फिर कृष्ण देखा कि एक जो कंदरा है, गुफा है, इसमें एक ही गेट है आने जाने के लिए, छुपने के लिए कोई स्थान नहीं था। तो कृष्ण क्या बन जाते हैं, तुरंत राधा रानी के गोद में मोर बन जाते हैं। और राधा रानी तो जब कीर्तिदा अंदर जाते देखते, अरे मैं तो मोर के साथ हूँ, राधा रानी कहती है। फिर उनको बड़े दुख के साथ उस मोर को उठाती है, वहां रखती है, और फिर कीर्तिदा के साथ राधा रानी चली आती है। तो यहाँ भगवान नाचे थे, मोर को भी हराया था नृत्य में, किसने, कृष्ण ने। हाँ, इसलिए नटवर है वो, कौन से, नटवर राय। हाँ, नटवर राय कहाँ दर्शन किया था, किसके याद है, जयपुर में है, राजा के सिस्टर के डेटिस थे। हाँ, मुरादा माधव के साथ। तो इस प्रकार से भगवान राधा और कृष्ण आनंदित होते हैं। और ये दानगढ़ है, कई प्रकार का दान लेते हैं। दान तो उस सांकरी खोर इसके नीचे हम गए तो वहां तो लेते दूध दही आदि। और दान ये भी है कि भगवान ने राधा रानी को डोनेट कर दिया था। सोचो, आपकी प्रिय वस्तु आप डोनेट कर सकते हो किसी को, नहीं। एक ब्राह्मण की ब्राह्मण पत्नी, ब्राह्मण की जो एक ब्राह्मण था, उनकी बेटी अभी विवाह के योग्य हो गई थी, लेकिन घर में धन नहीं था विवाह करने के लिए। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, जाओ धन लेके आओ, जैसे सुदामा को भेजा था ना, वैसे ही इनको भेजा। तो ये ब्राह्मण आया यहाँ, यहाँ तो श्रीदाम, सुदामा, मधुमंगल, ये सारे लीला के साथ भगवान यहाँ निवास करते थे। तो यहाँ सखियों को वो पकड़ते थे, गोपिकाओं को, और उनसे दान मांगते रहते थे। और एक सखी ऐसी थी जो किससे डरती नहीं है, वो है ललिता, सबसे बोल्ड है। कृष्ण की ऐसी की तैसी कृष्ण कांपते हैं सखी ललिता देवी के कारण। इसलिए हम जो साकरी कौर की लीला सुनते हैं नीचे, तो वहाँ ये हमेशा टैक्स मांगते रहते थे, मतलब दूध दही मांगते थे। ये बेचारे कैसे तो क्रॉस करते थे, और रोज डेली का या फिर था। तो इन्होंने सोचा एक दिन हम सारी सखियाँ इनको दंडित करते। सेम लीला आपको वहाँ मिलती है, दान निवर्तन कुंड, गोवर्धन में इस्कॉन के सामने जो कुंड है ना, वहाँ भी ऐसी लीला थी सेम। तो इन गोपियों ने सोचा रोज ही हमें हमसे टैक्स लेते हैं, अभी हम इनको मेरा मिल्क केक इनको दंडित करते। तो सारी गोपी आई, सारी झाड़ियों में छुप गई, और छुपे तो फिर जैसे ही कृष्ण, मधुमंगल और सखासगण आए, तो उस समय सारी गोपियाँ अचानक बाहर, महायुद्ध की तरह गोपी, और एक एक गोपी ने, दो दो गोपियों ने ऐसे पकड़ लिया गर्दन मधुमंगल की, और वो बेचारे क्या करेंगे, पकड़ लिया, कृष्ण को भी पकड़ लिया, और सबकी तो पिटाई की। जैसे ब्रजवासी ने कहा था ना, इतना मारा, कुछ तो एक दूसरे के चोटी में चोटी बांध दिया, किसी की चोटी पेड़ों में बांध दी, कृष्ण की भी बांध दी, मधुमंगल की भी चोटी बांध दी। तो मधुमंगल तो बेचारा ब्राह्मण है, उसको एक ही चीज अच्छी लगती है, ब्राह्मण भोजन प्रिया, ब्राह्मण को खुश करना है तो अच्छा भोजन खिलाओ, आपका हो जाएगा, आप जैसा कहोगे वैसे मंत्र उच्चारण करेगा तो वैसे जब मधुमंगल कहता है, हे कृष्णा मेरी चोटी खोलो, वो कहते हैं, अरे मेरी बंदी हुई है, तुम्हारी कहाँ खोलू। तो फिर भगवान को ये सारी सखिया कहते हैं, इसको दंडित करते हैं कि फिर से ऐसी हरकत नहीं करेगा। क्या दंडित करेंगे उनको, तो ये साथ अपने साथ सखी का वेश लेके आए थे ना, घाघरा और चुनरी और सारे क्लोथ्स, कृष्ण का ड्रेस पहना दिया उनको, गोपी का ड्रेस पहना है, बहुत गोपियों से टैक्स लेते हो, आज हम उल्टा करेंगे। हाँ, तो कृष्ण को सारे गोपी ड्रेस पहना लिया। अब सोचो कृष्ण गोपी ड्रेस, और ललिता एक सखी ने क्या किया, पूरा भरा हुआ मक्खन का, मक्खन नहीं दही का बड़ा पॉट के सर के ऊपर रखा, और कृष्ण चलने लगे। आप चले हो कभी पॉट सर के ऊपर लेकर, ट्राई करिए ब्रज में आकर। तो फिर जब कृष्ण चले और कहा वॉक करिए, चलो अभी कृष्ण डरते हैं गोपियों से, बाहरी रूप से वो दिखाते हैं कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, लेकिन कृष्ण डरते क्यों हैं, क्योंकि इतना अत्यधिक प्रेम है गोपियों का, प्रेम के कारण झुक जाते हैं। तो इतने कृष्ण को कहा चलो वॉक करो, हम देखना चाहते कैसे चलते हो माथे पर वो लेकर, तो कृष्ण जैसे चलने लगे तो ये जो ललिता सखी हैं ये ऊंचे स्थान में गई और एक एक पत्थर ले लिया और निशाना बिल्कुल फिक्स जैसे अर्जुन की तरह। हाँ सीधा कृष्णा जैसे चल रहे थे ठुमक ठुमक करते हुए तो पत्थर से जैसे मारा तो सारा दही का वो जो क्या कहते हैं पॉट है वो मटका टूट जाता है और सारे दही से कृष्ण का स्नान होता है। कृष्ण को कहते हैं ललिता सखी फिर से करोगे? कृष्ण कहते नहीं नहीं नहीं। तो ऐसे कृष्ण यहाँ वो टैक्स मांगते हैं और वास्तव में जब इधर जब वो ब्राह्मण आया यहाँ यहाँ काफी लीलाएं थी तो यहाँ जब वो ब्राह्मण आया और वैसे भी एक और एक लीला मुझे याद आई अचानक ही। ये गोपी कृष्ण क्या करते थे इन सखियों से या गोपिकाओं से मिलते थे तो उनको कुछ ना कुछ हमेशा चुरा लेते थे। कीर्तिदा माता राधा रानी को इतने सुंदर सुंदर रत्न मोती आदि ना सब जगह धारण करवाते थे। ये हमेशा कुछ ना कुछ कानों से निकाल देंगे गले से निकाल देंगे नोज रिंग निकाल देंगे अंगूठी कुछ ना कुछ लेके चले जाते थे। फिर इन गोपियों ने सोचा अभी इनको कुछ सिखाते ना पाठ पढ़ाते हैं। तो एक दिन गोपियों ने इतना प्रेम जताया कि इतने व्यंजन बना के लाया और बहुत खिलाया कृष्ण को इतना खिलाया 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 उनके सारे वस्त्र उतार दिए सारे उनके कपड़े और दूसरे कपड़े पहना के उनके सारे अलंकार आदि सारे ले लिए। और फिर कृष्णा कृष्ण जब ये चुराया करते थे और फिर कृष्ण जब एक बार राधा रानी को यहाँ मिलने के लिए आ गए तो उन्होंने श्यामा सखी का वेश धारण किया। कौन सी सखी का? हाँ इसलिए कहते ना मैंने वो बोला भी था सखी का वेश ब्रज में इधर धारण करते कृष्ण। तो वो आए और उनका बहाना क्या था सारा ड्रामा एक ही था कि राधा रानी से मिलना है राधा रानी से मिलना है। वो श्यामा सखी का वेश धारण करके आए और इतना लज्जित लज्जा की सीमा भी होती है ना कुछ आती हो जाता है तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने जो घूंघट डाला था वो या घुटने तक था तो कृष्णा हाथ पार कर लेते तो आए और बस मुख से ब्रज में बरसाना में घूमते घूमते श्यामा श्याम 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 की विरह में ना श्याम श्याम नाम लेते मूर्छित हो जाते थे रामा है तो ब्रज के बरसाना की गोपिया सखिया कहती थी क्या प्रेम है कृष्ण के लिए इनका अत्यधिक प्रेम उमड़ उठा है श्याम बोलने मात्र से मूर्छित हो जाते। तो फिर थोड़ी गोपियां इकट्ठा हो गई थोड़ा आगे चले फिर से वो बोल के मूर्छित फिर सारी बहुत सारी गोपियां एकत्रित हो गई। इनको कहा कि ये गोपी शायद नया नया विवाह हुआ है इनका यहाँ बरसाना में नई नई शादी होकर आई है इसलिए बहुत नंदगांव से कृष्ण से बहुत प्रेम है तो इनको ना कृष्ण से मिला देते। तो इन सब ने क्या किया वहां राधा रानी को ना कृष्ण का ड्रेस पहना दिया और कृष्ण का और कौन सा ड्रेस जब ये सो गए थे उनके सारे वस्त्र और अलंकार उतारे थे राधा रानी ने पहना बांसुरी आदि के साथ। देखा है ना आपने कभी कभी राधा रानी बांसुरी धारण करती है तो जब ये वेश धारण करवाया ललिता सखी आदि सखी उस नई सखी का हाथ पकड़ के ले गई कि आप शाम शाम बहुत करते हो चलो शाम से मिला देते हैं आपको। तो वहां गए तो ये शाम को या कृष्ण को देखने मात्र से कृष्ण ही थे वो तो राधा रानी को देखना चाहते थे तो उन्होंने कहा कृष्ण फिर आपने क्या घूंघट क्या है वो उतार दिया कहते यही तो चीज ढूंढ रहा था मेरी माता यशोदा कहते तुम इतने तुमको पहना के ले जाते हो कहाँ चले गए सारी चीजें एक दिन इन्होंने उतारे थे कहते यही तो मैं लेने के लिए ड्रामा कर रहा था। तो राधा रानी से सारे वो वस्त्र और जो भी अलंकार यशोदा माता कृष्ण को पहनाती है वो उतार कर ले जाते और कभी कभी कृष्ण डॉक्टर बन के आते यहाँ क्या बन के आते डॉक्टर बन के आते कभी कभी कृष्ण अलग अलग रोल धारण करते कभी कभी एस्ट्रोलॉजर बन के आते और बताते हैं कि मैं आपके चेहरे के देखकर आपके मन के भावों को पढ़ सकता हूँ। तो एक बार कृष्ण आए एस्ट्रोलॉजर बन के आए तो यहाँ गोपियों इन्होंने और इतनी फेमस है ये एस्ट्रोलॉजर योगी जैसे इन्होंने किसी ने पूछा आपकी खासियत क्या है कहते मेरी खासियत है आपके मन में क्या चल रहा है मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो ये गोपियों को लगा अच्छा है तो ये सारी गोपियाँ इकट्ठा हो गई ये जानना चाहती थी हमारे मन को भी पढ़ो बताओ क्या सोचती है हम किसके बारे में सोचती है। तो कृष्ण गए उन्होंने कहा तो इन्होंने कहा आप सब आग बंद करो। तो फिर जब ये इन सब ने आग बंद किया तो कृष्ण ने कहा ये तो अभी एस्ट्रोलॉजर बने थे पहचान नहीं पा रही थी इन्होंने कहा मैंने पहचान लिया है आप सब किसके बारे में सोच रही हो। तो गोपिया कहती है हम जिनके बारे में सोच रहे हैं तो आप यदि पावरफुल एस्ट्रोलॉजर योगी हो तो आप उनको हमारे सामने प्रकट करो। तो कृष्ण कहते आप सब आग बंद करो। तो सबने आग बंद की तो कृष्ण अपना योगी का वेश एस्ट्रोलॉजर का वेश हटा देते और अपने त्रिभंग ललित रूप में खड़े हो जाते। कहते आग खोलो तो खोलते तो कौन नजर आते कृष्ण। तो कहते इस प्रकार से भगवान हमेशा बहाना बनाते थे। जब वो ब्राह्मण यहाँ उनकी पत्नी ने भेजा जाओ कुछ बेटी के शादी के लिए विवाह के लिए कुछ लेके आओ तो ब्राह्मण यहाँ आता है और वो तो कृष्ण यहाँ होते राधा रानी और सखाओं के साथ तो क्या देता है कृष्ण दान में उनको राधा रानी को देता है अपनी प्रिया। मैं उस लीला को डिटेलिंग भूल गया हूँ। तो कृष्ण राधा रानी को दान में देते हैं तो ब्राह्मण कहता है पहले से मुझे एक बेटी का टेंशन है उसका विवाह करने में इतना परेशानी और दूसरी ने दूसरी भी दे दी तुमने मैं कैसे उसका विवाह कर सकता हूँ इसके बदले कुछ दे दो। तो राधा रानी को एक इसमें रखते तराजू में रखते। अब देखा कृष्ण इस्कॉन दिल्ली में पेंटिंग है घुसते ही है राउंड हम मारते ना वहाँ। तो राधा रानी को एक और रखा अभी सारे सखियों ने अपने गहने आदि डाले दूसरे ओर और जो इक्वल वेट हो गया ना तो वो ब्राह्मण को दे दिया और राधा रानी किसके पास आ गई फिर कृष्ण के पास। तो ऐसी असंख्य लीलाओं का स्थान है और ये लीलाएं बहुत मधुर हैं। इन लीलाओं के साथ सब हमारे पास सिद्धांत होता है तो ये लीलाएं और हमें दृढ़ बनाती हैं और आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या कहा है नित्य लीला सुखमय सदाइस पुरुक मोर मने। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं भगवान की ये लीलाएं बहुत सुखमय हैं हे मेरे मन इसमें सदा तुम्हारे मन में आती रहे। तो वही है नाम हम अच्छे से करते तो रूप गुण और लीलाएं। तो भगवान के धाम में इसलिए आना चाहिए आकर उन लीला स्थलियों में हम भ्रमण करते हैं तो फिर हम धाम में मानसिक परिक्रमा भी कर सकते हैं। नीडेड नहीं है कि हर बार हम आए लेकिन हर रोज हम गोवर्धन परिक्रमा कर सकते हर रोज हम बरसाना परिक्रमा कर सकते हर रोज हम कई लीला स्थलियों को विजिट कर सकते हैं। गोवर्धन परिक्रमा जैसे आप स्नान करते हो तिलक लगाते लगाते कर सकते हो नहीं कितना फास्ट है यहाँ 6 घंटे 8 घंटे बिताते हम और वो भी इसी टेंशन में कब खत्म होगी कोई भगवान का स्मरण नहीं होता। लेकिन घर में भी हम उन लीला स्थलियों को सुनते हैं मेडिटेट करते हैं और सीक्वेंस बना लेते हैं कि आज मैं मानसी गंगा से परिक्रमा शुरू करूंगा या करूंगी। मानसी गंगा से हरिदेव टेम्पल चकलेश्वर महादेव सनातन गोस्वामी का भजन गुड़ी ब्रह्मकुंड तीर्थकुंड वहाँ से जाओ तो दान घाटी आता है वहाँ से आगे जाओ तो राधा रानी के चिन्ह आते हैं दान निवर्तन कुंड आता है अन्न क्षेत्र आता है अन्योर आता है गोविंद कुंड ऐसा सिक्वेंस बनाओ तो आप कितने मिनट में परिक्रमा करोगे हाँ कुछ ही मिनट में। तो ये मानसिक परिक्रमा बहुत पावरफुल है। तो वैसे ही धाम को आकर हम यहाँ ही छोड़ देते हैं हमें क्या करना चाहिए ले जाना चाहिए अपने हृदय में और वहाँ जाकर भी धाम का स्मरण करते रहना चाहिए। इसलिए मैं उस दिन भी लेक्चर में कह रहा था रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन के लिए क्या कहते हैं किससे आसक्ति बनाओ गुरु से धाम ब्रज धाम और जो धामवासी ब्रजवासी है हाँ और राधा और कृष्ण जो युगल जोड़ी है वृंदावन की इनके प्रति आसक्ति 8 चीज़ों में से इन चीज़ों का वर्णन वो करते हैं। इस प्रकार से बरसाना आने का ये भी एक उद्देश्य है कि राधा रानी की कृपा हमें मिले और राधा रानी की कृपा सरलता से हम ले सकते हैं जब ये 2 एटीट्यूड हम डेवलप करते हैं एक तो सेवा का और दूसरा है कृतज्ञता का ग्रेटफुलनेस का। क्योंकि राधा रानी सर्विस पर्सोनिफाइड पर्सनालिटी है हाँ सेवा के द्वारा ही हम राधा रानी को आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए जब हम जप करते हैं तो क्या मांगते हैं भगवान से कि हे राधा कृष्ण आप हमें सेवा दो और सेवा मिलती है तो हम भागते हैं बहाने बनाते हैं। इसलिए बरसाना की कृपा इन 2 चीज़ों से मिलती है एक तो सेवा का भाव हम अधिक जागृत करें और दूसरा ग्रेटफुलनेस का कृतज्ञता का भाव जो भी हमें मिला है भगवान की कृपा से जो भी अपॉर्चुनिटी तो हम जब कृतज्ञ बने रहते हैं तो राधा रानी की कृपा फ्लो होती है राधा रानी उस व्यक्ति को मिलने आती है धाम में भी ना हो जैसे महाराष्ट्र में वो स्थान है विट्ठल का वो जो डिवोटी थे पुंडलिक वो वहाँ अपने मदर फादर जो वैष्णव थे उनकी सेवा कर रहे थे भगवान द्वारका से वहां गए उनको देखने। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसा कार्य करो कि भगवान आपको देखे। तो इस प्रकार से और धाम में आते रहना चाहिए हमें। धाम में आने से थोड़ा सा धाम के प्रति आकर्षण होता है ना, थोड़ी तपस्या है लेकिन अटैचमेंट हमारा धाम के प्रति होता है, यहाँ के लीला स्थलियों के प्रति होता है, जो भी स्पेसिफिक आचार्य है डिवोटी है उनके प्रति होता है। तो और यह झूलन लीला भी होती थी, यहाँ झूलन है। तो हम जो दर्शन करने जाएंगे राधा रानी का, वहाँ दर्शन करके हम निकल जाएंगे। तो वो विग्रह पहले नहीं थे लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो शिष्य है नारायण भट्ट, जिन्होंने वृंदावन की सबसे ज्यादा लीला स्थलियों को ढूंढ निकाला। तो नारायण भट्ट को वो ऊंचा गांव में रहा करते थे, ललिता सखी का गांव है यहाँ। ये बरसाना की तुलना एक कमल से की गई है और उसके साइड में 8 विलेजेस हैं, वो सारे अष्ट सखी के गांव है। कभी हम फ्यूचर में इन सारे प्लेसेस में जाने का सोच सकते हैं, अमेजिंग है। बरसाना ये बीच का भाग है कमल का, जहाँ वृषभानु रहते हैं। वृषभानु के जो 8 भाई है, टोटल 9 है, तो 8 भाई इन 8 विलेजेस में रहते हैं जहाँ ये अष्ट सखियों ने जन्म लिया है। हाँ, तो ये सारे ऊंचा गांव में ये महान डिवोटी प्रकट हुए थे नारायण भट्ट, जिन्होंने ब्रज भक्ति विलास नाम का ग्रंथ लिखा है। तो जितनी भी चीजें ब्रज के बारे में है, प्रणाम मंत्र हर स्थान का, वो सब उस ग्रंथ में हमें प्राप्त होता है। तो नारायण भट्ट गोस्वामी के स्वप्न में राधा रानी ने आदेश दिया, तो राधा रानी को उन्होंने वो विग्रह जो हम दर्शन करते वो उनको प्राप्त हुआ है और फिर उन्होंने एक उसको स्थापित किया। जब मुस्लिमों ने यहाँ आक्रमण किया था तो फिर शिफ्ट किया गया था राधा रानी को, उनकी जगह विशाखा देवी को वहां रखा था राधा रानी की जगह। और एक स्थान है MP में, शायद राजस्थान में शिवापुरा ऐसे कुछ, तो वहां ये राधा रानी, वहां एक राजा है उनके वहां निवास करते थे महल में। तो राजा इतने स्ट्रिक्ट थे, केवल पुजारी पूजा करके लॉक करके चाबी मंदिर के उनको दिया करते थे राजा को। तो राधा रानी ने कहा मुझे यहाँ नहीं, मुझे ब्रज में जाना है। पुजारी थे तो पुजारी को कहा कि आप मुझे यहाँ से ले जाओ। उन्होंने कहा मैं कैसे ले जाऊँ, मैं तो बूढ़ा हूँ, देखो ये चाबी तो मुझे राजा को देनी पड़ती है। कहा तुम जाने से पहले खिड़की खोल के जाओ, जो गर्भगृह था जहाँ राधा रानी का विग्रह रखते वह खिड़की था, खोलो वहां से एक सीक्रेट रोड है, वहां से मुझे ले जाओ। इन्होंने ये चाबी दे दिया राजा को और रात के 12 बजे कहा उठो और आओ मुझे लेने। राधा रानी ने कहा मुझे उठाओ, हाँ छोटे से विग्रह है, उठाओ, अलंकार वगैरह मत लो, मुझे ड्रेस पहनाओ और मुझे गोद में लेके दौड़ पड़ो। तो बूढ़ा व्यक्ति था वो पुजारी, दौड़ा, दौड़कर वो एक स्थान में आता है। सुबह हो जाती है, गले में पोटली में राधा रानी को रखते है और एक सरोवर के किनारे आते है जहाँ सोचते कि स्नान करता और मंगल आरती करता हूँ। तो जो डेटिस को लेके तो भाग गए थे, लेकिन यार राजा जब देखा कि अरे आज मंगल आरती का शंख नहीं बजा, सोचा अब वहाँ गोविंद देव का शंख नहीं बजे, सोचे कि सारे पुजारी सो गए। तो वैसे इन्होंने सोचा शंख नहीं बज रहा है, पुजारी कहाँ है, तो देखा पुजारी भाग के चला गया है। तो उस राजा ने घोड़ों पर सेना को भेजा, तो ये प्रभु जी वहाँ बैठे थे स्नान करके मंगल आरती कर रहे थे संसार दावा राधा रानी को, और देखा इसे पीछे वो सारे सैनिक। कहते राधा रानी अभी क्या करूँ, ये लोग पीछे खड़े हैं। कहते डरो मत मैं हूँ। तो कहा कि मुझे उठाओ और सामने चंबल रिवर है ना MP और राजस्थान के, उसमें बहुत विशाल बहुत गहरा, कहा वो नजदीक कहा था। उन्होंने कहा इस स्थान से कूदो उस नदी में जो बहुत गहरा था खाई के समान। उसने कहा इसमें कूदो मैं रहूँगा क्या जीवित। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा, पानी इतना ही होगा तुम्हारे लिए घुटने तक। उसने जंप लगाई तो रियली देखा इतनी विशाल नदी, क्रॉस करने के लिए घुटने तक पानी। अभी जो सेना घोड़ों के साथ उनके पीछे थी उन्होंने कहा ये बाबा जी बूढ़ा है जा रहा है उसके घुटने तक ही पानी, हम भी जंप लगाते। घोड़ों के साथ जंप लगाए तो डूब गए। उन्होंने कहा हमारे लिए तो डूब रहे और वो बाबा जी तो घुटने में पार कर रहे रिवर को। तो घोड़े वगैरह सब वापस आ गए और ये आ गए दौड़ते हुए राजस्थान बाउंड्री को पार किया, UP के बाउंड्री में आए। तो उन्होंने कहा मैं सेफ हूँ। तो यहाँ आ गए ब्रज में, तो सारे ब्रजवासी बरसाना में राधा रानी के आगमन के लिए वर्णन आता है कि दिए जला रहे थे, मृदंग बजा रहे थे, नाच रहे थे और कलर्स फेंक रहे थे राधा रानी का स्वागत करने के लिए। तो फिर राधा रानी को पहले तो अभी विशाखा को रखा था उनकी जगह राधा रानी के स्थान पर, विशाखा को हटा साइड में करते, वहाँ राधा रानी को रहते। तो जब राधा रानी मिली थी तो ललिता विशाखा भी मिली थी उन्हें, तो ललिता विशाखा के साथ राधा रानी है। तो जब फिर राधा रानी रहे तो राधा रानी को यहाँ क्या कहते हैं, लाडली, लाडली श्री जी भी कहते हैं, श्री जी और लाडली कहते हैं। तो ऐसा ये बरसाना श्री जी का स्थान है। हाँ, उनकी कृपा के लिए कृष्ण भी उनके चरण धूलि प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं, तो देव देवी देवताओं को क्या कहना। हाँ, तो इसलिए ये विशेष स्थान है। और राधा रानी का ये जो स्थान जो कई लीलाओं से भरा है, और ये बरसाना फेमस भी है किस चीज़ के लिए, होली के लिए। कभी होली में भी आई आप? हाँ, होली अभी तो वो ओरिजिनल रूप नहीं रहा। होली तो राधा कृष्ण के समय थे, जो पुष्पों से पुष्पों की पंखुड़ियों को सुखाकर कलर्स बनाया करते थे ना, नेचुरल कलर्स, उससे होली खेला जाता था। लेकिन ये होली अभी ख़त्म हो गई, उसने विकृत रूप धारण किया है। तो ये होली भी बहुत फेमस है बरसाना की, और राधा रानी और सखियों को भी बहुत अधिक प्रिय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती राधा रानी की, दान बिहारी जी की, कुशल बिहारी जी की जय। तो ये कुशल बिहारी जी का मंदिर है, मुझे याद नहीं भरत सिंह या भरतपुर के राजा थे, उन्होंने बनवाया था राधा रानी के लिए उस टेम्पल से। यहाँ के लिए ब्रजवासियों ने कहा नहीं, वहाँ से नहीं जाएंगे। तो इधर फिर उन्होंने दूसरा गेट स्थापित किया कुशल बिहारी राजा ने।